नमस्ते। आरंभ करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। और आप ऊपर एक देख रहे हैं हमारा QR, उसको स्कैन करके आप जा सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, और सब्सक्रिप्शन प्लान से हमारे उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आज है हमारे साथ रमणीक मान जी। रमणीक मान जी बहुत दिनों बाद हमारे पकड़ में आए हैं जयपुर डायलॉग्स पर, तो मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। और स्वागत करने के साथ साथ अब जो आज का टॉपिक है बड़ा, पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ जो है छठे और सातवें राउंड में जाने वाले हैं। और छठे और सातवें राउंड में जो यूपी, बंगाल और बिहार, जहाँ सातों राउंड होने, उनके अलावा यही खास चीजें रहेंगी, खास स्टेट्स रहेंगी। तो रमणीक जी, चंडीगढ़ बताएं सबसे पहले, शुरुआत करते हैं हम चंडीगढ़ से, जहां आप बैठे हुए हैं हमारे।
सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद सारे।
मनीष तिवारी जी को क्या अचानक जो है वो पहले लुधियाना छोड़ के आनंदपुर साहब गए, आनंदपुर साहब छोड़ के इधर आ रहे हैं।
इतना पंजाबी टर्म है कहने चफेर गड़िया, जरा चारों पासे फिरता है। राजनीति दे विच ना पॉलिटिक्स के अंदर कोई एक स्टेबिलिटी चाहिए, कोई उसके अंदर स्थिरता चाहिए। जब तक स्थिरता नहीं आती तब तक राजनीति में बड़ा दिक्कत हो जाती है। देखो चंडीगढ़ की एक डिमांड थी और ये मुद्दा खुद कांग्रेस ने उठाया और बहुत लंबे समय से उठा रखा था कि चंडीगढ़ को चाहिए लोकल कैंडिडेट। लोकल कैंडिडेट के नाम पे चंडीगढ़ के अंदर कैंपेन कांग्रेस पार्टी रन कर रही है पिछले कई वर्षों से, और वो सिर्फ इसलिए
पवन बंसल जी होते थे आपके, पवन बंसल जी तो लोकल ही थे।
हाँ, पवन बंसल लोकल थे, तो किरण खेर को टारगेट करने के लिए इन्होंने ये कैंपेन रन किया कि वी नीड अ लोकल कैंडिडेट। अब जब अपनी बारी आई तो इन्होंने पवन बंसल को इग्नोर करके उठा के मनीष तिवारी को भेज दिया। हालांकि पवन बंसल इज ट्राइंग टू शो कि पूरे भारत में मनीष तिवारी की तरह अब उनके पास 3-4-5 ऑप्शंस तो है नहीं। सो चंडीगढ़ इकलौती ऐसी सीट है जहां पे कोई भी पॉलिटिकल फ्यूचर जो है पवन बंसल का एग्जिस्ट करता है। आउट ऑफ चंडीगढ़ चाहे तो हरियाणा में ले आओ, चाहे पंजाब में ले जाओ, चाहे कहीं और ले जाओ, ही हैज गॉट नो फ्यूचर। अब कहने की बात यह है कि ये सपोर्ट कर रहे हैं पवन बंसल मनीष तिवारी को, फोन भी किए, कॉलें भी करी कि जी इस दिन मिलना है, आना है। क्या होते हवाते जो है इट डिड नॉट वर्क आउट, पर कहने के लिए जी मेरे सपोर्टर्स भी आए, एक अच्छी गैदरिंग करी मनीष तिवारी ने। पर वो गैदरिंग मोस्टली जो है ना वो पंजाब से आए हुए थे। जो संख्या दिख रही थी, जो टीवी में अखबारों में तस्वीरें दिख रही थी, वो जो नंबर्स हैं वो
आनंदपुर साहब बगल में ही है, मोहाली आनंदपुर साहब में लगता है।
करेक्ट, लोकल वोटर जो है उनके पास उस दिन इतना नहीं था। पवन बंसल जो है उन्होंने फोन तो किए बट ही डिड नॉट अटेंड दी रैली, तो मनीष तिवारी की रैली में वो नहीं आए। आई क्लियरली फील, देखिए क्या है कि इस बार संजय टंडन हैज अ अपर हैंड इन चंडीगढ़, ही इज अ लोकल कैंडिडेट। और सबसे बड़ी बात यह है संजय टंडन की कि वो किसी भी प्रोग्राम पे, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है छोटा हो बड़ा हो, ही हैज बीन वेरी एक्टिव इन दी सिटी। तो आइडेंटिटी क्राइसिस जो है संजय टंडन को, आइडेंटिटी क्राइसिस तो खैर मनीष तिवारी को भी नहीं है, मेरी मतलब कहने का ये है कि लोगों के साथ एक पर्सनल टच, एक आत्मीयता, एक जिसे कहते हैं ना कि पहचान जिहड़ी है, वो चंडीगढ़ दे विच संजय टंडन दी ज्यादा है बनिस्पत मनीष तिवारी। तो चंडीगढ़, लेट्स कॉल इट क्लियरली फॉर बीजेपी एंड मूव ऑन। चंडीगढ़ में कोई स्कोप नहीं है कांग्रेस का। और शिरोमणि अकाली दल की तो आपको पता होगा हरदीप बुटेला जो है
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कंबाइंड कैंडिडेसी है। कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से मनीष तिवारी लड़ रहे हैं, फिर भी बीजेपी के संजय टंडन से हार जाएंगे।
नहीं, मैं आपको एक और दे देता हूं। चलो फिर आप एक और ले लो। आप ये मत कहो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ है। फिर मैं आपको ये कहूंगा कि शिरोमणि अकाली दल ने जिसको अपनी टिकट दी हरदीप सिंह बुटेला को टिकट दी, उसने पार्टी ही छोड़ दी। 30 नंबर वार्ड से सिटिंग काउंसिलर है वो कहता है कि यार ना तो फंडिंग है ना फाइनेंस है ना कोई बात है, कोई सपोर्ट तो है नहीं, टिकट दे दी मेरे हाथ में, मेरे को लूटेंगे खाली कर देंगे। तो हरदीप पटेला ने क्या किया, वो समर्थकों समेत, मैं आपको बताता हूं कि उसने अपने 150 प्लस के आसपास समर्थक जो हैं उनको लेके वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर गया चंडीगढ़।
अच्छा,
तो अब आप ये बोलो कि कांग्रेस पार्टी शिरोमणि अकाली दल का पहली बार उन्होंने चंडीगढ़ में टिकट दी और वो बंदा पार्टी छोड़ के भाग गया, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर गया। अब ये ना सिर्फ इंडिया अलायंस में, आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि शिरोमणि अकाली दल का जो कैंडिडेट है वो भी आगे ज्वाइन कर गया। मैं फिर भी आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट एंड टेलिंग यू, ये फिर भी सीट जो है ना वो बीजेपी ही निकालेगी, 100% बीजेपी निकालेगी ये सीट।
हाँ, इवन दे तो आप, ये तो चंडीगढ़ की बात हो गई। अब चलते हैं पंजाब पे। अब पंजाब के वैसे तो इलेक्शन जो है वो सातवें राउंड में है और सारे लगभग सारे टिकट डिक्लेयर हो गए, खाली बीजेपी का एक कैंडिडेट डिक्लेयर होना बाकी है, शायद फतेहगढ़ साहब का। तो फतेहगढ़ साहब का, तो अब आपके बगल से चलते हैं, सबसे पहले आनंदपुर साहब को लेते हैं। तो आनंदपुर साहब में हमारे पुराने प्रेमचंद चंदू माजरा, आपको प्रेमचंद चंदू माजरा का किस्सा सुनाऊं क्या? मैं आनंदपुर साहब में ऑब्जर्वर था 2014 में।
सुनाओ सुनाओ।
इनको चंदू चोर कहते थे। अरे के सारे जिसको पूछूं, मेरे ऑब्जर्वर को पूछूं, किसी को कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूछूं, कलेक्टर को पूछूं, एसपी को पूछूं, चार चार डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं जी उसमें, आपके मोहाली पड़ता है, आपके आनंदपुर साहब यानी आपके रूपनगर पड़ता है, नवा शहर पड़ता है और होशियारपुर का भी एक आपका पड़ता है, तो चार चार डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, सभी जगह बंदे की ही रेपुटेशन थी। और सबका कह रहा था अंबिका सोनी तो आंख मूंद के 3 लाख से जीतेगी जी, क्या है, रिजल्ट आया तो पता चला 15,000 से हार गई। और वो आम आदमी पार्टी वाला तो 3,15,000 3,10,000 वोट ले गया और 15,000 से बेचारी अंबिका सोनी जी हार गई। तो वो चंदू जी फिर से है मैदान में और बीजेपी
तो
की तरफ से।
मैं आपको तीनों चारों मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ। श्री आनंदपुर साहब पार्लियामेंट सीट है, यहाँ से कांग्रेस से विजेंद्र सिंगला खड़ा हुआ है, मलविंदर कांग खड़ा है जी आम आदमी पार्टी से, प्रेम सिंह चंदू माजरा खड़ा है शिरोमणि अकाली दल बादल से, और बीजेपी से सरप्राइज मतलब सुभाष शर्मा को भेजा इन्होंने, जो पहले बीजेपी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी थे, बाद में प्रधान बने, वाइस प्रेसिडेंट। यहां से ना एक्चुअली अगर आप बीजेपी की कैंडिडेट सिलेक्शन देखो, अगर यहाँ से इकबाल सिंह लालपुरा जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एनसीएम के चेयरपर्सन है, उनका जो बेटा है यंग कैंडिडेट, हिज नेम इज अजय वीर सिंह लालपुरा, अजय वीर लालपुरा दे बिलोंग टू सैनी कम्युनिटी ओबीसी, और इस हलके में जो सैनी भाईचारा है ओबीसी भाईचारा बहुत ज्यादा है, और इसको पार्टी से कोई दस्सी पंजी की जरूरत नहीं, 500-600 करोड़ का आदमी है लड़का, वो एविएशन कंपनी रन करता है, अपने 25-26 हेलीकॉप्टर है उसने, मतलब कांग्रेस पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी हर एक के पास उसके हेलीकॉप्टर चलते हैं, उसने वहां पे आनंदपुर साहब में हेलीकॉप्टर कर देने थे एक बार। तो इसको ना दे के सुभाष शर्मा को दी है टिकट, तो कुछ सरप्राइज है कि भाई ये सुभाष शर्मा को टिकट देने का कारण क्या है। तो अब मैं विस्तार में तो जाता नहीं कि भाई ये क्या कोई इसके अंदर वॉकओवर है, क्विड प्रो को है, मैं तो ये नहीं बोलता, पर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो बैटल है वो आम आदमी पार्टी के मलविंदर सिंह कंग और प्रेम सिंह चंदू माजरा के बीच में, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा के बीच में है। और इस वक्त आज की तारीख में अगर हम बात करें तो कंग का अपर हैंड है आनंदपुर साहब
कांग्रेस के।
हाँ, ऐसा है।
ओके, वैसे यहां पर हिंदू वोट जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है पूरे इस कंस्टिट्यूएंसी में, आई थिंक दे माइट बी इन मेजॉरिटी।
इरिस्पेक्टिव मतलब आप ये ना इसको आप पंजाब को ना यू डोंट सी पंजाब एज अ हिंदू सिख डिवाइड, यू सी पंजाब एज अ सेंटीमेंट बाय एंड लार्ज। तो बाय एंड लार्ज आप सेंटिमेंट के तौर पे देखिए पंजाब को, आप इस डिवाइड में मत पड़िए, क्योंकि यहाँ से चंडू माजरा भी रहे हैं, यहाँ से मनीष तिवाड़ी भी रहे हैं, और यहाँ से मतलब यू कांट एक्चुअली पंजाब के अंदर ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट लाइक दैट। मतलब लोग स्टीरियोटाइप करने की कोशिश करते हैं, इट्स नॉट अ स्टीरियोटाइप, बट इस वक्त जो है सेंटिमेंट जो है ना आज की डेट पे एज ऑफ टूडे, आप 9 मई 2024 को ये मान के चलो कि अभी मलविंदर कंग का अपर हैंड है इस इलेक्शन।
ओके, आगे चलते हैं, इधर पटियाला चलते हैं।
आ जाओ पटियाला। देखो क्या है कि पटियाला में जो कंटेस्ट है, मैं समझता हूँ धर्मवीर गांधी और महारानी प्रनीत कौर के बीच में, और एनके शर्मा जो यहाँ से जीरकपुर से लोकल,
एक बार पहले भी हो चुका है 2014 में,
यहाँ का बिल्डर भी में। हाँ, तो बिल्डर लॉबी का बंदा है जी ये, ही वॉज बेसिकली ये बीजेपी का है, इसको अकाली दल ने अपने साथ ले लिया, इसको सीपीएस भी बना के रखा, मंत्री का दर्जा होता है, मनी मनी मनीड पर्सन, नो डाउट अबाउट इट, पर पॉलिटिकली इफ यू आस्क मी तो इसको शहीद किया गया है। शिरोमणि अकाली दल ने बोला कि चर्जा बेटा सूली राम बली करेगा, जा मौज ले। और सेम इज द केस विद बलबीर सिंह सिद्धू, बलबीर सिद्धू का भी यही हाल है, चर्जा बेटा सूली राम बली करेगा।
तो धर्मवीर गांधी तो कांग्रेस से है ना?
हाँ कांग्रेस से है, सॉरी मैं बलबीर सिद्धू की बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी से आया, सॉरी आम आदमी पार्टी, बोला चर्जा बेटा सूली राम बली करेगा। तो धर्मवीर गांधी ऑफ कांग्रेस पार्टी और महारानी प्रनीत कौर ऑफ बीजेपी, इन दोनों के बीच में कंटेस्ट है, और अगर इसमें महारानी प्रनीत कौर जीतती हैं तो आप टेक इट फ्रॉम मी कि ये उनका अपना पर्सनल निजी वोट बैंक है, अपना पर्सनल चेहरा है, क्योंकि लोग जो है ना वो महारानी प्रनीत कौर से तो एसोसिएट करते हैं, बिकॉज वेरी अनलाइक महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके बिल्कुल विपरीत ये लोगों के बीच में भी रही। हाँ देखिए, एक बात कहना बिल्कुल जरूरी होता है कि राज के दुख ये होते हैं कि आप हर एक आदमी को सुखी नहीं रख सकते, हर एक आदमी को कुछ नहीं कर सकते, यू कांट प्लीज एवरीवन। तो कई ऐसी सिचुएशंस परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसके अंदर आपके कारण लोग आहत होते हैं, दुखी होते हैं, और अगर कोई कमजोर आदमी आहत होता है तो वो अपने वोट से आपको चोट देता है, और कोई मजबूत आदमी अगर दुखी होता है वो पैसा भी खर्चता है, इन्फ्लुएंस भी करता है, चाहे वो आपके मतलब विरोधी के पक्ष में हो या ना हो पर आपके विरोध में होता है। तो ये राज के दुख जो है वो कहीं ना कहीं इनको पकड़ेंगे, और राज के दुख जो है ये इनको इनको परेशान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आज की डेट में इट इज अ वेरी वेरी टाइट बैटल बिटवीन महारानी प्रनीत कौर एंड धर्मवीर गांधी, कांग्रेस पार्टी के धर्मवीर गांधी कहते भाई साऊ बंदा है, चंगा बंदा है, लोगों के बीच विचरता रहा, लोगों की सेवा करता रहा, लोगों के बीच इहदी पछाण दूजे किस्म की बनी हुई है, राज च हिस्सा कभी मिलया नहीं, जदों बनया भी MP उदों भी राज च हिस्सा नहीं मिलया, तो हुण भी कोई चांस नहीं राज च हिस्सा मिलण दा। सो लोगों की सोच यह है कि अगर राज में हिस्सा रखना है तो महाराणी प्रनीत कौर के साथ रहना है, पहले भी राज में लोगों ने हिस्सा रखा है, तो राज के सुख और राज के दुख दोनों इनके साथ हैं, तो अगर जीतती है तो राज का सुख प्राप्त होता है लोगों को, अगर नहीं जीतती तो वो राज के दुख के कारण कहीं ना कहीं विरोध भी है, पर इनका पर से एज सच इन पर्सन एज ए इंडिविजुअल एज ए कैंडिडेट विरोध ज्यादा नहीं है। और जो आपके पास वीडियो सर्विस हो रही है ना वो सब प्रायोजित है, प्रायोजित वीडियो, वो लोग पैसे दे के विरोध कर रहे हैं या वीडियो बना के भेज रहे हैं कि जी महारानी बढ़ नहीं देती, प्रनीत कौर बढ़ नहीं देती, वो इट इज ऑल मतलब वोटर बड़ा इस मामले में बड़ा क्लियर है।
ओके, और अब चलते हैं संगरूर तो आपकी मोस्ट रेडिकलाइज्ड है इस टाइम, सुखपाल सिंह खैरा भी है और सिमरनजीत सिंह मान वापस तो आएंगे ही आएंगे वहां पे, मुझे लगता है कर दिया कि नहीं उन्होंने अनाउंस।
ये सॉरी
सिमरनजीत सिंह मान ने अपनी कैंडिडेचर अनाउंस की कि नहीं की?
नहीं, वो लड़ेंगे जी वहां से, ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा इस बार, इट इज गोइंग टू बी ए बिटरली फॉट ट्रायंगुलर कंटेस्ट, और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि सिमरनजीत सिंह मान जो हैं वो जो वोट तोड़ेंगे वो आम आदमी पार्टी के वोट तोड़ेंगे, और यहाँ पे अरविंद खन्ना और इकबाल सिंह का जो शिरोमणि अकाली दल से खड़े उनका कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, देयर इज हार्डली एनी स्कोप, द कंटेस्ट इज प्योरली बिटवीन गुरमीत सिंह मीथेर एंड सुखपाल खेड़ा, और आज की डेट में सुखपाल खेड़ा के साथ यूथ भी खड़ा है और इसके साथ इसका काडर भी मजबूत है और क्लियरली सुखपाल सिंह खेड़ा हैज अ अपर हैंड इन संगरूर, ही हैज अ अपर हैंड।
आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो दोबारा अपनी पुरानी सीट हार जाएंगे?
100% 100%। देखो फाइट तो है अभी, पर डिपेंड करता है सिमरनजीत सिंह मान जो है वो आम आदमी पार्टी के वोट कितने मैग्नेट पुल करते हैं। अगर वो आम आदमी पार्टी के वोट पुल कर रहे हैं, देखिए संगरूर में एंटी भगवंत मान और एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस वोट पड़ा था, तब जाके सिमरनजीत सिंह मान साहब जो है वो जीते थे, ठीक है। तो इस वक्त द फाइट द कंटेस्ट जो है वो वाजे तौर पर क्लियरली जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुखपाल खैरा और मीतेर के बीच में है और सब पानी कम चाय है, कोई कोई कंटेस्ट नहीं है यहाँ पे इन दोनों के बीच में है। बट ट्राइंगुलर मैं इसलिए कहता हूँ इसको क्योंकि जो वोट पुलिंग है, अगर आम आदमी पार्टी का वोट पुल कर लिया ज्यादा मान साहब ने, तो ये सीट क्लियरली जो है वो सुखपाल खैरा के हिस्से में जा रही है।
तो दर्शकों को याद दिला दो कि हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं पंजाब की कंस्टिट्यूएंसीज और चंडीगढ़ की हमने कर ली। चंडीगढ़ में तो क्लियर रमणीक जी ने बीजेपी को क्लियर कट जीत दे दी है और अभी तक जो तीन कंस्टिट्यूएंसी हमने डिस्कस की हैं आनंदपुर साहिब पटियाला और संगरूर
चंडीगढ़,
उसमें चंडीगढ़ तो हो गई उसको मैं पंजाब की जो तीन की हैं उसमें सभी में टॉसअप बता रहे हैं, यही कहेंगे तीनों में कॉन्टेस्ट है।
तीनों में ही कॉन्टेस्ट है।
एक में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच में, एक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और तीसरे में कांग्रेस और अकाली
आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल,
सॉरी आम आदमी पार्टी और
अकाली दल, प्रेम सिंह चंदूमाजरा अकाली दल,
हाँ
नहीं प्रेम सिंह चंदूमाजरा,
ओके
हाँ अकाली दल मलविंद,
ओके और संगरूर में सिमरनजीत सिंह मान और सुखपाल खैरा के बीच में कांग्रेस वर्सेस कौन सी पार्टी है उसकी?
संगरूर में मीत हेयर और सुखपाल खैरा के बीच में, मीत हेयर और सुखपाल खैरा है, ट्राइंगुलर कंटेस्ट है, इट इज अ ट्राइंगुलर कंटेस्ट पर मीत हेयर और सतपाल खैरा के बीच में है। अगर आम आदमी पार्टी के वोट पुल कर लिए सिमरनजीत सिंह मान साहब ने, फिर ये जो है वो क्लियरली सुखपाल खैरा की गोद में जाएगी सीट।
अच्छा तो अब चलते हैं हम बठिंडा पे, चौथी सीट पंजाब की डिस्कस कर रहे हैं बठिंडा, और बठिंडा में कांग्रेस से है जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू, आम आदमी पार्टी से गुरमीत सिंह खोडिया, अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल और बीजेपी से परमपाल कौर सिद्धू। ये इनका वो फाइनल हो गया क्या रिटायरमेंट वो वीआरएस परमपाल कौर सिद्धू का?
नहीं, ये शी रिजाइंड और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, पंजाब सरकार ने इनको ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा था। आज इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि कंसिडर मी एज ए रिटायर्ड आईएएस और मैंने रिजाइन कर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, आई एम नॉट कमिंग बैक टू ज्वाइन द सर्विस और आई एम गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम बठिंडा, इन्होंने बड़े वाजे क्लियर कर दिया। और ये मलुका साहब जो है ये उनकी डॉटर इन लॉ नूह कहते हैं पंजाबी से, उनका दी नूह है। अभी क्या है कि यहाँ पे जीत मोहिंदर सिद्धू और गुरमीत सिंह ये दे आर नॉट इन कंटेस्ट, कंटेस्ट हरसिमरत बादल और परमपाल कौर के बीच में ही है और हरसिमरत बादल वो लंबी में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बादल साहब का जो सेंटिमेंट है उसको पूरा जो है उनके फेवर में जा रहा है। अभी आज की डेट में हरसिमरत के पास अपर हैंड है और क्यों, शी इज अ अर्ली स्टार्टर ऑल्सो, एक तो पॉलिटिकल फैमिली से हैं, सिटिंग एमपी हैं, पहले मंत्री भी रही हैं, बादल परिवार में से आ रही हैं और इनके पास हेड्स अप जो हेड स्टार्ट है वो पिछले 6 महीने का है, ये 6 महीने से अपनी कैंपेन में लगी हुई है, सो शी हैज अ अपर हैंड एज ऑफ नाउ। परमपाल कौर विल बी एबल टू गिव हर अ फाइट बट शी इज द ओनली पर्सन हु विल बी गिविंग हर अ फाइट बठिंडा के अंदर, मे बी सिनेरियो चेंजेस, क्योंकि पंजाब के अंदर जो क्लियर पिक्चर है ना वो आप 20 मई के बाद यानी कि आज से 11 से 12-13 दिन के बाद जो है ना आप 20 से 22 मई के बीच में यू विल बी एबल टू गेट अ क्लियर पिक्चर कि एक्चुअली हवा किस तरफ जा रही है, और वो भी क्या है, ये जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है या एक माउथ टू माउथ कैंपेन चलता है जो ग्राउंड के ऊपर ना, दैट विल स्टार्ट टू टेक इफेक्ट ओनली आफ्टर 20th और 22nd 23rd के बाद जो है ये उठना शुरू होगा इलेक्शन। आज डेट में जो परिस्थितियां हैं वो आप और हम डिस्कस कर रहे हैं आज की डेट में, इट्स अ
फाइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली वी नो, तो वी विल चेक बैक अगेन आफ्टर अनदर 2 वीक्स और सो। तो
हां
ये आपका कहना है, लेकिन पिछली बार जो है ये हमारे हरसिमरत कौर जो है वो बड़ी मुश्किल से जीती थी, 7-8 हज़ार से जीती थी।
देखो क्या है ना कि मैं फिर आपको बता रहा हूं कि कंटेस्ट जो है वो हरसिमरत बादल और परमपाल कौर के बीच में ही है, और आज की डेट में मैं बता रहा हूं अपर हैंड हरसिमरत के पास है, क्योंकि देखिए परमपाल को तो अभी मिली है टिकट ना परमपाल कौर को, और हरसिमरत बादल जो है वो पिछले 6 महीने से कैंप कर रही है, कैंपेन कर रही है, उनका इलेक्शन कैंपेन 6 महीने पुराना हो गया, विजबी इनके इलेक्शन कैंपेन को अभी 6 दिन नहीं हुए, हफ्ता नहीं हुआ, सो इट विल टेक टाइम फॉर हर टू पिकअप। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़ के कंटेस्ट सिर्फ बीजेपी में और अकाली दल के बीच में है, तो ये दो पुराने एलाइज हैं जो आपस में टकरा रहे हैं, और इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि हरसिमरत के पास अपर हैंड है, वो भी सिर्फ सेंटिमेंटल, जो एक आप कह दीजिए कि बादल साहब की डेथ के बाद जो एक इमोशनल उनको मिल रहा है वो अभी इनके फेवर में है, इसमें कोई डाउट नहीं।
ओके, पांचवी सीट है फिरोजपुर, शेर सिंह घुवाया INC, आप जगदीप सिंह काका बरार, शिरोमणि अकाली दल नरदेव सिंह मान और बीजेपी राणा गुरमीत सिंह सोधी।
शेर सिंह घबाया जो है, शेर सिंह घबाया जो है ये अच्छा बुला रहा है, अच्छा प्रवक्ता है, बोलता अच्छा है, ही स्पीक्स वेरी वेल, राय सिख है और इनकी कम्युनिटी भी अच्छी है वहां पे फिरोजपुर में, शिरोमणि अकाली दल से आते हैं, जिस भाषा में लोग एक पॉलिटिशियन को देखना चाहते हैं उस भाषा में बात करते हैं, जो काम करने की शैली, जो लहजा होना चाहिए वो काम करने की शैली, वही लहजा भी है इनका, पर फिर भी अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स आई एम कॉलिंग दिस सीट इन फेवर ऑफ काका बराड़। काका बराड़ आम आदमी पार्टी इज वेरी स्ट्रॉन्ग देयर, आज की डेट में इज वेरी स्ट्रॉन्ग।
ओके, नेक्स्ट सीट इज फरीदकोट, दिस इज अ रिजर्व्ड सीट, इसमें कांग्रेस अमरजीत कौर सोके, आप इस करमजीत अनमोल, एंड सैड इस राजविंदर सिंह, बीजेपी इस हंसराज हंस। जी
हंसराज हंस के साथ भी वही बन रही है जी, वो दिल्ली से यहाँ पे आ गए हैं, और क्या है कि कांग्रेस प्रायोजित कुछ तथाकथित किसान जथेबंदियां किसान है, वो उन्होंने जो है ना इनका बहुत मतलब हाल खराब कर रखा है हंसराज हंस का फरीदकोट के अंदर, जहां जाते हैं उनके पीछे पीछे वही 10-15 लोग जो हैं वो पहुंच जाते हैं विरोध करने के लिए। अब पैसा जो है वो कांग्रेस का है। हाँ हाँ, मतलब अब 500,000 तो बोलूंगा नहीं ना, जितने आ रहे हैं उतने ही बताऊंगा कि वही घिसे पिटे 10-15 लोग हैं, वो जाके विरोध करते हैं और वो प्रदर्शन करते हैं, कुछ लोग उनके साथ तमाशा देखने के लिए भीड़ जुड़ जाती है, फिर उसके वीडियो आ जाते हैं, तो उनको इस तरीके से वहां पे हरास किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। पर मैं फिर भी बताऊं आपको, अमरजीत साहू के राजविंदर सिंह कहीं नहीं है, ये कंटेस्ट दो सेलिब्रिटीज के बीच में है, करमजीत अनमोल और हंसराज हंस के बीच में, और हंसराज हंस जो है वो इस बार इनका लोअर हैंड है, अपर हैंड करमजीत अनमोल का है इलेक्शन में, और चलिए चाहे सरकार का साथ कह लीजिए चाहे अपनी पंजाबी कहते हैं बंदा साहू है, करमजीत अनमोल लिखे बंदा साहू है बंदा को। एक यहाँ से और इंटरेस्टिंग है, सरबजीत सिंह खालसा जो बेन सिंह के बेटे हैं, बेन सिंह वो जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, तो ये जो है जो हार्ड कोर पंथिक वोट है, जो हार्डलाइनर वोट है, उसको ये काट सकते हैं, और ये जो 20,000-22,000 के आसपास मेरा प्रेडिक्शन है कि ये वोट काट सकते हैं, तो वो प्राइमरीली वोट जो है वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस या शिरोमणि अकाली दल के खाते में से कटेगा, जो हार्डलाइनर वोट है।
तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि कॉन्टेस्ट है यहाँ पे
अभी, करमजीत अनमोल इज फार अहेड, अभी कॉन्टेस्ट तो बड़ा मुश्किल है बोलना, बहुत आगे।
ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज फरीदकोट के बाद फतेहगढ़ साहब में, तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो
नहीं मेरे को आस उम्मीद भी कमी है कि हो सकता है 12 पे कॉन्टेस्ट करें, 13 पे करेंगे, अगर करेंगे भी तो इट इज टू लेट इन द डे नाउ।
तो यहाँ पे कौन आ गए? अमर सिंह,
यहाँ पे
कांग्रेस
अमर सिंह,
कुलदीप सिंह।
ये रायकोट के रहने वाले अमर सिंह। अमर सिंह इज अ फॉर्मर IAS, ये MP के अंदर मेरे ख्याल चीफ सेक्रेटरी होते थे। इनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है यहाँ से। आम आदमी पार्टी से गुरप्रीत सिंह GP है, श्रोमणी अकाली दल से बिक्रमजीत सिंह खालसन। तो इस सीट के लिए अगेन जो एक रेपुटेशन है, जिसमें पंजाबी कहते भी साऊ बंदा बहुत, तो गुरप्रीत सिंह जीपी की रेपुटेशन अच्छी है और अपने फेस वैल्यू अच्छी है इसकी। और जिसमें पंजाबी कहते भी साऊ बंदा, ये लोगों ने ये सोच लिया कि भी चलो साऊ है बंदा, पर अभी ही हैज दी अपर हैंड इन दिस। अमरजीत सिंह सॉरी ये अमर सिंह इज नॉट इन
कांग्रेस, ओके।
कि
हाँ
आज की डेट में ये हालात है, कल को क्या है? हाँ नहीं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी विन दिख रही है।
आम आदमी पार्टी की भी दिख रही है फतेहगढ़ साहब में। लुधियाना बताइए, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग कांग्रेस, अशोक पाराशर आम आदमी, रंजीत सिंह ढिल्लों अकाली, और रवनीत सिंह बिट्टू फॉर्मर कांग्रेसमैन नाउ इन BJP।
देखो जी, दो गल्ला है भाई,
वैद
साफ
सिंह,
सुथरी है नहीं।
वैद सिंह जी के पोते हैं नवनीत सिंह
राजा
बिट्टू।
वड़िंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ, राजा वड़िंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं कि देखो जी, मैं तो लड़ना चाहता नहीं सीगा, मैं तो चाहता सीगा कि भी इलेक्शन लड़ाइए। मैं लड़ना नहीं चाहता था, मैं तो चाहता था इलेक्शन लड़ाऊं, मैं कैंपेन में जाऊं, मैं कांग्रेस को जिताऊं, हम अपर हैंड लेके आए। तो यहाँ पे खेला हुआ है, क्या खेला हुआ है कि राजा वड़िंग और प्रताप बाजवा जो है वो सुखजिंदर रंधावा, सुखी रंधावा को फंसाने के चक्कर में थे कि इसको फंसाओ किसी तरीके इलेक्शन में डालो। वो अभी हरियाणा डिस्कस करेंगे तो वो भी आपको बताऊंगा, वहां पे भी ये खेला है। तो करते करते ये हुआ कि सुखी रंधावा फंस गया, सुखी रंधावा फंस गया, सुखी रंधावे ने जरा राजा बड़ी फंसा लिया नाल अपने। अब वो दोनों ही इलेक्शन लड़ रहे हैं और प्रताप बाजवा वो बाहर बैठा हुआ देख रहा है कि तुम दोनों लड़ो बेटा, मैं देखूंगा तुम्हारे को। तो यहाँ पे इन फाइट जो आप कह लीजिए, वो एक दूजे को फंसा गए, एक आप बच गए, दो फंस गए। राजा वड़िंग दी मैं तुहानू खासियत दसा जी, एक बड़ी हासे वाली गल है। राजा वड़िंग ने ऐ मन के चलो एक बंदा स्पेशल अपने नाल, जिहड़ा हायर कीता अपने नाल रखा हुआ, वो एक आदमी स्पेशली क्यों हायर किया, अपने साथ क्यों रखा है, ये बताने के लिए जी ये राजा वड़िंग है जेड़ा आ रहा है ना, ये राजा वड़िंग है। सो ही इज गॉट सच, इज गॉट सच आइडेंटिटी क्राइसिस इन लुधियाना। हाँ चलो पुराना लीडर है, ठीक है, यूथ कांग्रेस के बीच भी रहा है और कोरोना के वक्त भी इसने बड़े तमाशे किए थे कि जी ये जो ट्रेनें मोदी चला रहा है ये कांग्रेस ने चलाई है या हमारी सरकार ट्रेनें चला रही है, आपको घर भेज रही है माइग्रेंट लेबर वगैरह को। बट द फैक्ट इज कि जिस तरफ माइग्रेंट वोट गया, अगर माइग्रेंट वोट BJP को भुगता तो आप 1001% मान के चलो बिट्टू के पास अपर हैंड है, बिट्टू जीत रहा है।
बिट्टू
बाकी दो
जीत
जो
रहा है,
हैं लुधियाने में, दे आर नॉट इन कंटेस्ट। रंजीत
ओके।
लोहे दूजा पप्पी है जरा अशोक, ये कंटेस्ट
अच्छा,
हुआ, ये
एक
कंटेस्ट है दो
जो
का,
इस बार
बिट्टू और
जो
आज की
मैंने
डेट।
जी आज की डेट में
आज की डेट में अपर हैंड 100% जो है वो रवनीत बिट्टू के फेवर में है।
ओके एक चीज मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि कांग्रेस ने जब से अपीजमेंट शुरू किया है आपके खालिस्तानियों का, तब से वो डाउन पे डाउन जा रही है। क्योंकि अमरिंदर सिंह के टाइम पे बड़ा क्लियर स्टैंड हुआ करता था कि कांग्रेस वॉज द वन हु वॉज फाइटिंग द रेडिकल्स, इसलिए जो भी रेडिकल से दुखी थे या जो हिंदू वोट या आपका दलित वोट, ये सब कांग्रेस की तरफ ग्रेविटेट होता था इस वजह से कि दे विल फाइट द रेडिकल्स। लेकिन जब से कांग्रेस जो है उसने सरेंडर किया रेडिकल्स को, तब से ये आपका जो इनका ट्रेडिशनल वोट जो था वो तो इनसे शिफ्ट हुआ ही है ना।
100% शिफ्ट हुआ है, 100% शिफ्ट हुआ है। और कांग्रेस की जो नेशनल लेवल पर आइडेंटिटी रही आज तक, वो एक सेक्युलर आइडेंटिटी रही और वो सेक्युलर 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 करके ही हमेशा वो अपना जो है वोट बैंक जो है संभालते रहे, चाहे वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। बट जब एक तरफ हार्डलाइनर्स के साथ अलाइन करना शुरू किया इन्होंने एट अ सेंट्रल लेवल, उसके बाद से देर इज अ ड्रिफ्ट इन देयर वोट बैंक, इन देयर वोट शेयर। और वो सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, और वो हुआ है ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया। और मैं कह रहा था आपको राजगीर दुख, तो राज के दुख कई जगह तो बीजेपी को भी तंग कर रहे हैं और कई जगह कांग्रेस पार्टी के ऊपर से लोगों का विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। और जो बार बार बात होती है मोदी की गारंटी, तो पंजाब इज स्लाइटली डिफरेंट सिचुएशन। दो पंजाब जो है ना वो कोई इस बात के ऊपर इस आधार पे वोट नहीं करता कि जी क्या आइडियोलॉजी है पार्टी की, इस बात पे इस आधार पे वोट नहीं करता कि जी क्या डेवलपमेंट हुई, कितनी सड़कें बनी, कितने हाईवेज बने, कितने स्कूल बने, कितने कॉलेजेस बने, कितने हॉस्पिटल्स बने, क्या आपके पास आईआईटी आईएएम आए, इरिस्पेक्टिव पंजाब चलता है कोई इंटरटेनमेंट कितने आ पंजाबियों नजारे लेने हैं, इलेक्शन के भी नजारे लेने हर चीज के इसमें ना। हाँ जी एक्चुअली मतलब पीपल हेयर इंजॉय देयर इलेक्शंस। यहाँ पे आइडियोलॉजी वगैरह चलो वो एक फिक्स्ड वोट बैंक है, ठीक है, अलग बात है जो हार्डकोर वोटर है वो जो किसी पार्टी से अलाइंड है, फ्लोटिंग वोटर है ना उन्हें नजारे लेने हैं बस, उसको जहां अच्छा लगा ना, उन कोई मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट की नहीं है। तो पंजाब का जो एक सेंटिमेंट है, इमोशन है, जो सोच है, उसको आप आप ये कह दो कि भी शोशेबाजी से बाहर निकालना और उसको मतलब डेवलपमेंट की तरफ, नेशनल सिक्योरिटी की तरफ संजीदा करना बड़ा डिफिकल्ट है। लोग बहुत सारे नहीं है अभी भी जो इस सेंटिमेंट के ऊपर वोट करते हैं। यहाँ पे सेंटिमेंट पे नहीं, यहाँ पे इंटरटेनमेंट पे वोट होती है, सेंसलेस वोटिंग होती है यहाँ पे। एक तरफा वोट देखो ना 2017 में क्या किया, 2022 में क्या किया उठा गया आम आदमी पार्टी का, मतलब एक तरफा ही वोट दी थी, बिल्कुल सेंसलेस वोटिंग होती है। बट हवा जिस तरफ की मैंने आपको कहा 20 तारीख के बाद जो वर्ड ऑफ माउथ चलेगा ना, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी, उसके बाद पता लगेगा कि हवा किस तरफ की है। अभी तो जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है वो
कुछ तो लगता है जैसे आपके आम आदमी पार्टी का जो सिटिंग एमपी है या कांग्रेस का सिटिंग एमपी है, दोनों बीजेपी की तरफ गए, तो ये बंदे तो दोनों माने जाते हैं कि भाई इनका ग्राउंड टच है, ग्राउंड से कुछ इनको मिला होगा तभी तो गए होंगे।
चलो अब आप सारी बातें मत पूछो ना मेरे से, यहाँ पे
अच्छा, छोड़ छोड़ दो, ऑफ करने के बाद पूछ लूंगा। अब हम
कदे पंजाब की राजनीति देखो, जो ये पार्टी स्विचिंग है ना वो इतनी ज्यादा हो रही है। पंजाबी का एक गीत है, कहते भी कदे इस फूल ते कदे उस फूल ते यार मेरा तितलियां वर्का, कि तितली जैसे कभी इस फूल पे बैठते हैं कभी उस फूल पे बैठते हैं, कोई मतलब आप वो कारण जो है आप इसकी बात कर रहे हो सुशील रिंकू की या शीतल अंगुरल
जलंधर सीट की बात कर लेते हैं।
हाँ कर लो,
चरणजीत सिंह चन्नी टन्नू
सर कंटेस्ट तो सुशील रिंकू और चन्नी के बीच में है।
ओके
नहीं नहीं और कुछ नहीं, महिंद्र केपी और ये पवन कुमार टिनू छोड़ दो, कुछ नहीं है, कंटेस्ट नहीं है, ये वर्सेस चरणजीत चन्नी और सुशील रिंकू वर्सेस, बस यही है, इन दोनों के बीच में कंटेस्ट है। और चन्नी एक्चुअली जो है ना, टू माय सरप्राइज चन्नी इज एक्चुअली गिविंग अ फाइट, मतलब मेरे को तो उम्मीद नहीं थी जब ये लास्ट के 6 महीनों के लिए मुख्यमंत्री बने और उसके बाद कदे कहना जी मैं मंजा भी बोल लेना, मैं वाहन भी कस लेना, मैं ट्रक भी चला लेना, मैं पट्टे भी कतर लेना, मंजा भी चो लेना उस तो बाद। बट समहाउ ना इस बारी थोड़ा ज्यादा है ये वाल लोगों का, पर इस वेले कंटेस्ट इज ओनली बिटवीन आप ही मान लो कि सुशील रिंकू और इसके बीच में कंटेस्ट है और कोई कंटेस्ट नहीं।
अच्छा चलिए, तो ये जलंधर हो गया। अब अमृतसर,
अमृतसर जी ये गुरजीत औजला जो सिटिंग है, गुरजीत औजला के सामने आम आदमी पार्टी का कुलदीप सिंह धालीवाल है, उत्थे अनिल जोशी है, तरनजीत संधु है। देखो मैं तुम दसा ये कंटेस्ट बीजेपी और लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच है। सो गुरजीत औजला इज स्ट्रोंग, ही इज इन अ विनिंग पोजिशन, बट कमिंग फ्रॉम बिहाइंड जो तरनजीत संधु है, ही इज पिकिंग अप वेरी क्विकली, इन्हों का ग्राफ बड़ी छेती गेन हो रहा है। और जिस हिसाब से ग्राफ गेन हो रहा है, तो इवेंचुअली आई फील कि जदों तक पोलिंग की तरीक आएगी, डेट्स आन गई पोलिंग दी, उदों तक ही विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन टू गिव अ वेरी गुड फाइट। और वैसे भी इस वक्त गुरजीत के पास ये आप ये मान लो कि बाय एंड लार्ज बीजेपी के पास अर्बन वोटर्स में अपर हैंड है और रूरल वोटर्स में, रूरल एरियाज में जो है वहाँ पे अपर हैंड जो है वो कांग्रेस को मान लीजिए आप या आम आदमी पार्टी को मान लीजिए, कई हद तक जैसे श्रोमणी अकाली दल को भी किसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। बट जो पंथिक वोट बैंक, जो हार्ड लाइन आपकी सीट्स हैं, जैसे खदूर साहब है, खदूर साहब के अंदर मैं खदूर साहब पे भी आएंगे, इंटरेस्टिंग कंटेस्ट होगा। और आपकी संगरूर है, ये हार्डलाइन सीट्स है, हार्डलाइन दो सीट हैं इनके अंदर, देखो कंटेस्ट कहाँ जाता है। बट टॉकिंग अबाउट अमृतसर, तो तरनजीत संधू इज गेनिंग ग्राउंड वेरी क्विकली, मतलब इतनी स्पीड से ग्राउंड गेन करना इज रिमार्केबल, इज वेरी वेरी रिमार्केबल। और स्पेशली क्योंकि एक सिख डिप्लोमेट,
उनके तो हेरिटेज भी है ना, वो तेजा समुद्री जी के क्या है वो,
यस हेरिटेज है इनकी, एंड हाँ हेरिटेज है इनकी, ये पॉलिटिकल फैमिली है, आज से नहीं 100 साल पुरानी पॉलिटिकल फैमिली है। और इनका आप ये मान लीजिए कि एसजीपीसी के अंदर भी और सिख पंथिक राजनीति में भी इनके परिवार का दखल रहा है। बट ही इज गेनिंग ग्राउंड एट अ वेरी रैपिड पेस और ही विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू गिव अ फाइट आफ्टर 21st-22nd ऑफ मे। उसके बाद वी कैन सिट अगेन एंड डिस्कस की आज की स्थिति क्या है। तो आज गुरजीत औजला हैज द अपर हैंड एंड द कंटेस्ट इज बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस।
अब आ जाते हैं खडूर साहब,
खडूर साहब इज अ हार्डलाइनर सीट जी,
तो इसमें
अकाली दल हार्डलाइनर सीट है।
अभी तक बठिंडा के अलावा अकाली दल और कहीं फाइट में नहीं दिखा है? नहीं, आनंदपुर साहिब में भी
नहीं। अभी मैं आपको इसका भी मैं आपको विश्लेषण दे देता हूँ। हाँ, वहां पे भी आनंदपुर साहिब में भी फाइट में है। इस सीट का विश्लेषण मैं आपको दे देता हूँ। अमृतपाल इंडिपेंडेंट हैज अ अपर हैंड, ही हैज अ बेटर पोजीशन देन लालजीत भुल्लर, बलबीर जीरा, मनजीत मन्नाविंड, मियाविंड, इन सारे तो उपर विरसा सिंह बलटोहा, तो तुसी मान लो अमृतपाल दे नाल, या इसको ट्रायंगुलर मान लीजिए आप संगरूर की तरह, ये भी हार्डलाइनर पंथिक सीट है। तो इसमें विरसा बलटोहा, लालजीत भुल्लर और अमृतपाल दे विच, क्योंकि पाजी तुसी ना यू कांट कॉल पंजाब इलेक्शंस लाइक दैट। एक पासे अगर चला गया अमृतपाल इज कंटेस्टिंग,
फाइल नहीं किया अभी तक,
अमृतपाल कंटेस्ट कर रहे हैं।
ओके चलिए, तो चलिए कम से कम थोड़ा बहुत कहीं एक जगह अकालियों का भी नाम तो आया, बाकी तो अकाली जो है दे आर आउट एवरीवेयर।
हाँ नहीं, बट मैं एक आपको लास्ट में विश्लेषण दूंगा अकाली दल बीजेपी के बारे में ना, अगर याद रहा आपको पूछना और मेरे को याद रहा बताना तो बताऊंगा आपको।
चलिए तो हम अभी आखिरकार पूछ लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा बहुत डिटेल हो गया, अब हरियाणा भी डिस्कस करना है, तो इसको अच्छा। फटाफट करना पड़ेगा। तो होशियारपुर और गुरदासपुर दोनों एक साथ।
ओके, होशियारपुर बेसिकली की है जी कि होशियारपुर जी है एक प्राइमरली दलित सीट है, इतने दलित भाईचारा जोड़ा है ना उसका काफ़ी मतलब रुझान रहता है, अपर हैंड रहता है। बट यहाँ पे आई पर्सनली फील कि ये सीट इस वक्त कॉल करनी बहुत मुश्किल है, मतलब इस सीट के ऊपर मैं अभी कॉल नहीं करूँगा। और इसमें बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो बेसिकली क्या है कि वो लास्ट मोमेंट पे ना वो लीडर सोल्ड आउट हो जाता है, बिक जाता है। तो अब ये बीएसपी का लीडर जिस तरफ जाके बैठेगा वहां पे अपर हैंड आ जाएगा। अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉल होशियारपुर।
ओके, गुरदासपुर।
हाँ, गुरदासपुर आ जाओ जी। गुरदासपुर ते इत्थे सुखी रंधावा है जी, इत्थे दलजीत चीमा है, इत्थे अमन शेर है आम आदमी पार्टी का, इत्थे दिनेश बब्बू है बीजेपी का। इत्थे तुसी जी क्लीयरली मन के चलो कि दलजीत चीमा श्रोमणी अकाली दल और दिनेश बब्बू बीजेपी ना दे विच कंटेस्ट है।
ओ
इतों सनी देओल वाज दी सिटिंग एमपी, सनी देओल सिटिंग था यहाँ पे। अकाली दल और बीजेपी टू फॉर्मर अलाइज, दे हैव क्लियर कंटेस्ट अमंग देमसेल्स। सुखी रंधावा नू मैं देखदा नहीं जी जित्ते दे इस वारी, ता लोकां दा सेंटीमेंट नहीं इन्हां दे नाल जुड़िया होया।
किस है सुखी रंधा
ना? हाँ सुखी रंधावा,
क्योंकि ये यहाँ पे ये था कि बीजेपी वाले कहते थे कि भाई सनी देओल तो यहाँ आता नहीं है, लोकल को टिकट दो, तो इसलिए दिनेश बब्बू को टिकट दिया गया।
नहीं दिनेश बब्बू तो है जी, फाइट दे रहा पूरी, पर इतने कंटेस्ट चीमे और बब्बू दे बच्चे।
तो चलिए आज की डेट में यदि आपसे पूछा जाए तो पंजाब में किस, जो आपने बताया उसके हिसाब से तो बड़ा मिक्स्ड आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारी आपकी पार्टियां जो हैं वो तीन तीन चार चार कहीं आसपास टिकेंगी जाके, तो इसमें अगर आपको देना हो आज को, हम कहें कि साहब कि आप
इस तरह स्कोर दीजिए, आज की डेट्स ना सर इस तरह,
तो स्कोर आप क्या देंगे?
नहीं सर, मैंने टोटल जोड़ घटा किया, नहीं ये टोटल जोड़ घटा आप कर लो, हमने सीटें तकरीबन सारी डिस्कस कर ली हैं, ये जोड़ घटा आप कर लो और इसमें हाँ कर ली सारी सारी डिस्कस कर ली है, इसमें जोड़ घटा आप कर लो, मैंने इसका फाइनल नहीं बनाया हुआ, मैंने बस ऐसे ही रखा हुआ था इसको, ये आपके पास टीम होगी पर मैं जोड़ लेंगे। मैं दोबारा बोल देता हूँ जी, बिलासपुर में
अब रहने दीजिए, नहीं तो फिर और हरियाणा के लिए टाइम ही बचेगा। मैं जो है वो मोटा मोटा बता देता हूँ, 3-3-3-2 जैसे तीन बीजेपी हैंड, तीन में आपके कांग्रेस अपर हैंड, तीन में आम आदमी अपर हैंड और दो में अकाली दल अपर हैंड, ये अभी तक चल रहा है और बाकी
सर एक में इंडिपेंडेंट का भी अपर हैंड है जी, अमृतपाल का।
हाँ तो फिर उसको वहां से अकाली कम कर दीजिए, फिर एक एक हो गया, अकालियों की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है।
3-3-2 11 होगी ना, 13 सीटें हैं, चलो एनीवे लेट्स गो फॉरवर्ड।
नहीं चलिए हाँ, 3-3-3 एक एक में एक का चार भी है ना, किसका आपको आम आदमी पार्टी को चार कर दीजिए और 3-3-3-2-1 3-3-4-3-2-1
अपर हैंड। देखो इस वक्त इस इलेक्शन में अभी जो भी है सर वो आप जोड़ लेना, मैंने नहीं जोड़ा।
चलिए आइए, चलो तो थोड़ा हरियाणा डिस्कस कर लेते हैं। अब हरियाणा में मैं सारी सीटें डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी क्लियरली जीत रही है और उसमें एक गुड़गांव है, इसमें फरीदाबाद है, सॉरी हाँ गुड़गांव फरीदाबाद और आपके करनाल है, कुरुक्षेत्र है, और जिनमें कॉन्टेस्ट है उनकी बात कर लेते हैं। भिवानी भी क्लियर है क्योंकि भिवानी में तो सरेंडर ही कर दिया हमारे। आप लोग ये देख रहे हैं कि रोहतक बचाने के लिए, मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि रोहतक बचाने के लिए हमारे हुड्डा जी ने 4 सीटें दांव पे लगा दी, उन्होंने यादव को टिकट दिलवा दिया भिवानी से जिससे उनकी कोसली बच जाए, और सोनीपत में उन्होंने ब्राह्मण को टिकट दिलवा दिया जिससे उनकी वो उधर वाली एक ब्राह्मणों वाली कंस्टिट्यूंसी है वो मिल जाए उनको थोड़ी सी, और उन्होंने उधर वीरेंद्र सिंह के बेटे का टिकट कटवा दिया कि जिससे जो है वो उनको थोड़े से सारण वोट मिल जाए। तो खाली क्या एक रोहतक पे ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और कहीं चुनाव नहीं लड़ रही?
नहीं देखिए एक बात तो पहले क्लियर कर लो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को मतलब भविष्य का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं और हरियाणा प्रदेश का भविष्य का मुख्यमंत्री जो है मतलब अखौती कहने पंजाबी तथा कहते वो एक पार्लियामेंट सीट से बाहर भी निकल रहा, एक पार्लियामेंट सीट रोहतक के बाहर नहीं जा रहे। हुड्डा साहब ने पक्का कैंप पक्का डेरा रोहतक में लगा रखा। अब आप ये मान के चलो कि रोहतक में इट इज अ फाइट, इट इज अ गुड फाइट, और अरविंद शर्मा सिटिंग एमपी है और अरविंद शर्मा ने जो है आपने कहा ठीक बिल्कुल आपने विश्लेषण पकड़ा कि वो जातिवादी समीकरण को साधने के प्रयास में उन्होंने बाकी सीटें खराब कर ली। वो सिर्फ जातिवादी समीकरण साधने के चक्कर में नहीं, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को भी खत्म करने के लिए उन्होंने कुछ काम किए हैं, जैसे सिरसा से उन्होंने उतार दिया कुमारी शैलजा को अशोक तंवर के सामने, तो कुमारी शैलजा
अंबाला की बजाय वहां
भेज दिया, समझ लीजिए सिरसा का वो इलाका जो पंजाब के साथ टच होता है, हाँ हाँ वहां भेज दिया। अच्छा बंतो कटारिया को, रतनलाल कटारिया की वाइफ है ये, इनको जो है सिंपैथेटिक वोट जो है रतनलाल कटारिया जी की डेथ के बाद ना सिंपैथेटिक वोट मिले, और ये अपने टाइम पे कटारिया जी के साथ भी जो है ना एज एम पी एज ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द बीजेपी, स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे बीजेपी के और मंत्री भी रहे केंद्र सरकार में, उनके साथ बहुत एक्टिव नहीं है ये शुरू से, और बीजेपी के पास इनसे अच्छी चॉइस भी नहीं थी यहाँ पे हरियाणा के अंदर। दूसरी तरफ वरुण चौधरी जो फूलचंद मलाना के बेटे हैं, सिटिंग एमएलए हैं ये अंबाला में हल्का, इनका मलाना फूलचंद मलाना के बेटे हैं वरुण चौधरी, और इनको यहाँ से टिकट दिए। मेरे को लगता है कि कंटेस्ट एक तरफ ही है अंबाला में। नवीन जिंदल आपने कहा सुशील गुप्ता फाइट नहीं दे पाएंगे उतनी, पर हाँ एक जो फैक्टर है कि जो आप ये मान के चलिए जाट और चटसिक वोट है उसको साधना पड़ेगा बीजेपी को टू ब्रिंग अ लार्जर मार्जिन, क्योंकि अगर नवीन जिंदल आज घर भी बैठ जाए,
पिछली बार 5 लाख से जीते थे तो क्या छोटी थोड़ी मोड़ी कम हो जाएगी?
मैं कह रहा हूँ अगर घर भी बैठ जाएं कैंपेन नहीं भी करें तब भी लाख डेढ़ लाख वोट से जीत जाएंगे, अगर कैंपेन करेंगे तो 5-5.5 लाख वोट का मार्जिन आ जाएगा इनको। और मेहनत कर रहे हैं ये ग्राउंड
जो सीटें कंटेस्ट में उनको डिस्कस कर रहे हैं।
शैलजा का फाइट है अभी, शैलजा के पास अपर हैंड है, रणजीत कंटेस्ट वाली पे आ जाओ जी, बाकी तो एक तरफ ही है।
कंटेस्ट वाली जो है वह सिरसा हिसार रोहतक सोनीपत।
सिरसा हिसार नहीं सर, सोनीपत तो कंटेस्ट नहीं है।
नहीं है?
नहीं नहीं।
अच्छा वो हुडा जी ने सरेंडर कर दिया। सॉरी सर,
सोनीपत नहीं है सर,
वो हुडा जी ने सरेंडर कर दी। ठीक है ठीक है ठीक है।
सिरसा हिसार रोहतक ये तीन सीटें कंटेस्ट में है, सोनीपत भी नहीं है कंटेस्ट में। यहाँ पे सतपाल ब्रह्मचारी आ गए, ये बेसिकली हरिद्वार के उत्तराखंड के, वहां से एमएलए का इलेक्शन लड़े हुए हैं, यहाँ पे आके हरियाणा में उत्तराखंड से आके ये एमपी का ट्राई कर रहे हैं, तो इट इज अ वेरी वेरी फार कराई। और करनाल तो डिस्कस करने का कोई फायदा ही नहीं है, 5-6 लाख से ऊपर जाएगी सीट। दिव्यांशु बुद्धिराजा इज नॉट समबडी हु कैन गिव अ चैलेंज टू मनोहर लाल। तो ये सिरसा में, हिसार में और रोहतक। एक चीज है, हिसार में अगर दीप बिश्नोई जो चौधरी का परिवार है वो अगर मेहनत कर ले, जैसे इन्होंने मेहनत खूब मेहनत करी राजस्थान के इलेक्शन में, बिश्नोई वोटर्स के बीच में खूब घूमे, खूब इन्होंने मेहनत करी उस जगह, अगर ये अभी डट के मेहनत करे तो अमंगस्ट ऑल दी जाट्स एंड मतलब स्पेशली चौटाला साहब का जो मतलब देवीलाल के परिवार है, चौधरी देवीलाल के परिवार में से भी दो आप समझे प्रत्याशी है यहाँ पे, तो इस वक्त कंटेस्ट तो है बेसिकली रंजीत चौटाला के और जयप्रकाश के बीच में, जेपी के बीच में। पर अगर नॉन जाट वोट अलाइन हो गया, जैसा कि आप देखिए कि सारे मोस्टली जाट्स हैं फ्रेम में, तो अगर नॉन जाट वोट जिस तरफ पड़ेगा, जिस जाट को नॉन जाट वोट पड़ेगा वो जीतेगा, और समीकरण जो है वो रंजीत चौटाला के फेवर में दिखते हैं। मतलब बावजूद इसके कि जो बातें कही जा रही है कि जी यहाँ पे विरोध है, यहाँ पे ऐसा है वैसा है, बावजूद उसके सीट्स जो आप मान के चलिए बाकी जो 7 सीटें हैं उनका इफेक्ट हिसार पे भी आ रहा है, और नॉन जाट की राजनीति करने वाली बीजेपी वाहिद पार्टी बची है हरियाणा के अंदर, इंडियन नेशनल लोकदल, जेजेपी और कांग्रेस ये जाट की राजनीति कर रहे हैं, और कैंडिडेट भी वहां से उन्होंने जाट किया। तो जिस जाट कैंडिडेट को नॉन जाट वोट पड़ेगा हिसार में उसके पास अपर हैंड पड़ेगा। सो रंजीत सिंह चौटाला के पास अपर हैंड है हिसार में। कंटेस्ट में सिरसा अभी टू अर्ली टू कॉल, सिरसा इज अर्ली टू कॉल। इस वक्त अशोक तंवर इज पिकिंग, बट आप ये मान के चलिए कि अशोक तंवर यहाँ से पहले भी एमपी रह चुके हैं, ही हैज हिज ओल्ड कांग्रेस कार्डर, और यहाँ पे जैसे आप ये मान के चलिए कि इस इन दोनों में से जिसकी तरफ ज्यादा जाट वोट आया वो विन की सिचुएशन में है। और अगर भूपेंद्र हुडा बाहर निकल के कैंपेन नहीं करते, और जैसे कुरुक्षेत्र में खुद अभय सिंह चौटाला आ गए हैं और वो खुद कुरुक्षेत्र में उतरे हुए, तो वो जाट वोट पोलराइज करेंगे जो मोस्टली बीजेपी अगेंस्ट, तो लाख डेढ़ लाख वोट पड़नी है वो एंटी बीजेपी वोट उनको पड़ेगी, तो जो बीजेपी की वोट कटेंगे वो लोकदल को जाएंगे, उससे बेनिफिट सीधा सीधा बीजेपी को मिलेगा, कांग्रेस को नुकसान है या इंडिया अलायंस को इस केस में नुकसान है। अशोक तंवर के फेवर में अगर इशारा भी कर दिया जाए इन दो लीडर्स की तरफ से, अपने दम पे तो जीतने की हैसियत रखती है बीजेपी का, कार्डर बेस बहुत बड़ा है, वोटर बेस बड़ा है, बट अगर थोड़ा सा भी बाहर से उनको सपोर्ट मिल जाए, जो सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका अगर जाट वोटर फेवरेबल होता है तो बीजेपी निकाल लेगी। बिल्कुल विपरीत है हिसार के, हिसार में जिस जाट कैंडिडेट को नॉन जाट का वोट मिलेगा वो जीतेगी, और सिरसा के अंदर उसका विपरीत है, जिस कैंडिडेट को जाट वोट मिल गया उसका अपर हैंड है।
आइए रोहतक पे, द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड सीट इन हरियाणा, प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड इन द एंटायर नॉर्थ इंडिया।
बिल्कुल, नो डाउट अबाउट, निसंदेह। देखिए रोहतक के जो समीकरण है ना, रोहतक में समीकरण ऐसे हैं कि अरविंद शर्मा का जो अपना कोर वोट बैंक है, जो इनकी अपनी है, उसके अलावा जैसे आपने डिस्कस किया कि जो यादव वोटर है कोसली का या इधर का, वो अलाइन करना है, पिछली बार भी मोस्टली जो है ना वो आप ये मान के चलिए कि यादव वोटर ने बीजेपी को जिताया था, अगर वो इंटैक्ट रहा तो इस बार फिर बीजेपी का अपर हैंड है, पर इतना टाइट इलेक्शन था 6500-6600 वोट का, वो भी लोकसभा का इलेक्शन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉल राइट नाउ। पर अभी की सिचुएशन में दीपेंद्र के पास अपर हैंड है, जो जातिवादी समीकरण साधने की कोशिश करी। बेसिकली कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सिर्फ एक सीट के ऊपर 10 में से कंटेस्ट कर रही है, और अगर ये भी हार गए तो बहुत बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी इनकी। 2000
सारे मित्र भी तो लगे हुए हैं
विधानसभा में,
बंसीलाल परिवार, सुरजेवाला परिवार, वीरेंद्र सिंह परिवार, वो सारे परिवार जो है वो होड्डा को डाउन करने में तो लगे ही हुए हैं ना।
ये एसआरके ग्रुप है, ये जो दूसरा ग्रुप है एसआरके ग्रुप, ये सुरजेवाला ग्रुप है, किरण चौधरी ग्रुप है, ये जो लगे हुए हैं ना, ये इनको हराने में लगेंगे। बट मैं वही कह रहा हूँ कि ले देंगे, कांग्रेस के पास एक सीट ऐसी है जिसपे वो कंटेस्ट दे पा रहे हैं, वो है रोहतक। और रोहतक में देखो भीतर घात जो है वो कांग्रेस को नुकसान देगी, चाहे वो सिरसा हो, चाहे वो रोहतक हो, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे वो आपका भवानी मिंद्रगढ़ हो, ये भीतर घात जो है वो मारेगी इनको सब जगह। पुरानी कह चुकी है अंबाला में कुमारी शैलजा एमपी रह चुकी है अंबाला से, और वरुण चौधरी जो है वो फूलचंद मलाना के बेटे हैं, जो कि हुडा ग्रुप के माने जाते हैं। तो हुडा ग्रुप के कंटेस्टेंट को किरण ये अगर ये डिसाइड कर लेती है शैलजा कि मेरा जो, क्योंकि शैलजा का अपना घर अंबाला में है, अंबाला में रहती है, अंबाला कैंट में, वो तो उनका अपना घर अंबाला में, अगर वो ये डिसाइड करती है कि यार हमारे किसी भी वोटर ने इनको वोट नहीं देनी, तो आप ये समझ लो कि बाकी जो नौ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है मुलाना को छोड़ के, जैसे पंचकूला है, कालका है, अंबाला शहर है, अंबाला कैंट है, या आपका मुलाना है, ये इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बड़ी आफत आ जाएगी इनको बाकी 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में।
जी तो चलिए, तो फिर अब हम चलते हैं अब दर्शकों के प्रश्नों की ओर। हरियाणा तो क्लियर एज डेलाइट कि कांग्रेस एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पे फाइट कर रही है, और मुश्किल से दो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिसमें उनका कुछ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, जेबीजेपी जी कौन आ गए, केशव अग्रवाल जी, एक मिनट, केशव अग्रवाल जी, सर क्या बीजेपी जीतेगी? कहाँ हिंदू वोट करने नहीं जा रहे जितने जाने चाहिए जा रहे हैं, सच सोच रहे हैं कि एक वोट से क्या होगा, क्योंकि 400 पार तो हो ही जाएगा। ये देखिए, ये पूरा आपने भी देख लिया केशव जी कि ये जो सारा नैरेटिव फैलाया गया था, अल्टीमेटली तो पता चल रहा है ना। अब ये पिछले राउंड में तो जितनी थी सीटें, जितना पोल टर्नआउट था उतना ही आ गया। नेक्स्ट, R3 जी है, 1951 से 2011 तक का सेंसस का डेटा कंपेयर करें तो मालूम चलेगा कि मुस्लिम कितने। ये मैंने आज किया है, देखिए 3:30 बजे मैंने एक एपिसोड किया है इसके ऊपर, टॉक किया है, वो देख लें। नेक्स्ट, जे बीजेपी जी, मान जी तुसी दैनिक सवेरा नू इंटरव्यू दिती सी ऑन योर कुरुक्षेत्र टिकट चांस, क्वेश्चन, तुसी हरियाणा नू छड़के पंजाब राजनीति विच भाग क्यों नहीं लेते लेंदे?
नहीं, मेरे से सवाल पूछा था, तब मैंने कहा था कि भाई मेरे को नहीं पता इस बारे में कुछ भी, सवाल पूछने में तो सवाल का जवाब देने में क्या जाता है।
जय श्री राम, माय कैलकुलेशन इज बीजेपी इज गेटिंग हिंदू एंड माजी सिख वोट,
मजहबी
क्या बोल रहे हैं,
मजबी कहना चाह रहे हैं तो मजबी कहना चाह रहे हैं तो मजबी, ये ठीक कह रहे हैं कि मजबी जो कम्युनिटी है, जो दलित भाईचारा है, वो है बीजेपी के फेवर में, इसमें कोई डाउट नहीं।
राहुल के, पंजाब का भला करना है तो रमणीक जी को सीएम बनाओ, लीजिए साहब आपके सीएम बनने की डिमांड आ गई, हम भी पीछे हैं उसके, आप सीएम बनेंगे तो हम भी जो है चंडीगढ़ में आके थोड़ा घूमेंगे कामेंगे।
ओ सर, आपके पास चंडीगढ़ में वैसे भी घर है, आप आइए ना कभी भी।
हर्षित संदीप,
ये कंसर्न, बट जिस हिसाब से पानी ऊपर से आ रहा है, फ्लो हो रहा है, कई ऐसी जगह हैं जहां पे वाटर डेफिसिट के अलावा, देखिए क्रॉप रोटेशन इज समथिंग विच इज द नीड ऑफ द आवर, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, बहुत ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है ग्राउंड वाटर, बहुत सारे इलाके हैं जो डार्क जोन में जा रहे हैं. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, फिर भी आई थिंक स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन भी अवसर है, टाइम है. बट आपकी जो असेसमेंट है वो अगले 30-40 साल के लिए आपकी असेसमेंट ठीक है, अगर यही चलता रहा तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर पंजाब इन डेज टू कम. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज अपने हैं, और जो आप ये कह लीजिए राइपेरियन होने के नाते हमारे पास पानी आ रहा है, दैट विल ओनली हेल्प. और आने वाले समय में मेरे को लगता है कि कुछ पानी जो पंजाब में फ्लो कर रहा है पाकिस्तान पंजाब में, दैट मे ऑल्सो गेट डाइवर्टेड नॉट जस्ट फ्रॉम पंजाब बट ऑल्सो फ्रॉम जे एंड के. तो वाटर सरप्लस जो है वो राजस्थान और पंजाब और हरियाणा, दो तीन स्टेट्स को बेनिफिट होगा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से. बट इट विल टेक एफर्ट, इट विल टेक टाइम, और क्रॉप रोटेशन इज द नीड ऑफ द आवर.
In my humble opinion, someone from Chandigarh UT is done for BJP in Punjab. BJP may increase its vote share, but winning more than 2 is extremely tough. Good for 2027 Vidhan Sabha. Some saying BJP 7-8 is away from reality.
Well, I agree with you, and your opinion is very spot on and correct. Chandigarh is a done deal. पंजाब, सी आई टेल यू, मैं कह रहा था ना कि सर अगर आप याद रखना आपको और मेरे को बताना, तो ये बात सही है. शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अगर कंबाइन हो जाते इस बार, तो ये 7-8 का जो कॉल है ये एनडीए अलायंस को कन्वीनियंट था. इट वॉज समथिंग विच वॉज पॉसिबल, बट इट डिड नॉट हैपन, एंड फॉर वेरी गुड रीजंस. बीजेपी हैड टू कम अलोन एंड सोलो इन पंजाब, और बीजेपी विल इंक्रीज इट्स वोट शेयर ट्रेमेंडसली. Undoubtedly, पर अगर 27 से पहले
ultimately it had to leave Akali Dal. How long can they stick to them, especially when they are getting more and more radicalized?
नहीं, ऐसा है कि बीजेपी
प्रकाश देखिए प्रकाश जी रहे नहीं, प्रकाश सिंह बादल का जो इन्फ्लुएंस था वो रहा नहीं. अभी तो अकाली दल इज इट लुक्स लाइक रैक टैक कॉम्बिनेशन.
मैं ना आपको फिर भी बताऊं, दी ओनली वे for revival for Shiromani Akali Dal in Punjab is to settle with the BJP on a equal footing. ye keh ke ki ji we are the majority partner, you are the majority partner, aur hum aapko 117 mein se 20 seaten denge ya 22 seaten denge ya 25 seaten denge, wo nahi hoga. if BJP and Akali Dal come together on a equal footing, to 2027 mein aapko sarkar BJP aur inki Shiromani Akali Dal ki combined sarkar dikha denge aapko 27 mein.
Okay, next, last question.
But it has to be equal. Ye respectable alliance hona chahiye.
Sir, Sidhu is not campaigning. Can he rejoin BJP?
No, that depends. BJP wants him back or not.
I think it's good riddance. इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम पूर्ण होता है. आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, रमणीक जी को बहुत बहुत धन्यवाद. हम फिर से एक बार और मिलेंगे. जैसा रमणीक जी ने कहा, 2021 के बाद जब चुनाव चढ़ रहा होगा, हवा क्लियर हो गई होगी, तब हम एक बार फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए रमणीक जी को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.
सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद.